नमस्कार भारत, तारीख 18 मार्च दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। नेपाल के पोखरा में हुई सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की मुलाकात। सुषमा स्वराज ने कहा पठानकोट हमले की जांच के लिए टीम भारत आएगी।
जेआईटी कब आएगी? 27 तारीख की रात को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी और 28 तारीख से अपना काम शुरू करेगी।
बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस के घोड़े शक्तिमान के पैर को आखिरकार काटना पड़ा। भारत माता की जय बोलने में क्या है असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत?
नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा। अगर कोई मेरे सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे इससे खुशी होती है तो मैं कहूंगा भाई भी लगाइए बिल्कुल। आप मुझे फखर है जय हिंद कहने पर, खुशी होती है जब मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूँ।
इनका भी कश्मीर श्रृंखला में सुनिए डॉक्टर रमेश तामीरी को। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी संयुक्त जांच टीम 27 मार्च को भारत आएगी। नेपाल के पोखरा में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज की मुलाकात के बाद ये घोषणा की गई। 2 जनवरी को हुए पठानकोट हमले के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संवाद हुआ है। इसके अलावा सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान में इस साल नवम्बर में होने वाले सार्क सम्मेलन के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 31 मार्च को वाशिंगटन में होने वाले परमाणु सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिलेंगे। गुजरात के राजकोट में गौ रक्षा एकता समिति नाम के संगठन के एक सदस्य की कीटनाशक पीने से मौत हो गई है और इसके बाद शहर में तनाव बना हुआ है। गौ रक्षा एकता समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी मनीषा चंद्र को एक ज्ञापन देकर देश में गौहत्या और गौमांस का निर्यात रोकने की मांग की थी। समिति के सदस्यों ने ज्ञापन देते हुए कहा था कि अगर उनकी मांग 24 घंटे के भीतर नहीं मानी गई तो गौ रक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पर ही आत्महत्या कर लेंगे। पुलिस का कहना है कि गौ रक्षा एकता समिति के 8 सदस्यों ने कल हाथों में कीटनाशक की बोतल लिए जिलाधिकारी के कार्यालय के पास पहुंचे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि चरमपंथी संगठन के इस्लामिक स्टेट के नरसंहार के मामलों की जांच में अमेरिका सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश करेगा। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट पर मध्य पूर्व में ईसाई, यजीदी और शिया समुदाय के लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया था। वाशिंगटन में दिए गए अपने भाषण में कैरी ने कहा था कि अपने कब्जे वाले इलाकों में आईएस धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोगों को निशाना बना रहा है।
My purpose in appearing before you today is to assert that in my judgment...
दाएश अपने नियंत्रण वाले इलाकों में कई समूहों का नरसंहार कर रहा है जिनमें ईसाई, यजीदी और शिया मुसलमान शामिल हैं। दाएश अपनी विचारधारा और कार्रवाइयों से नरसंहारात्मक है और वो इसी में विश्वास करता है। ये थे जॉन कैरी के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है। कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने और परमाणु तथा मिसाइल टेस्ट करने की बात कही थी। ताज़ा हमले की अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने पुष्टि कर दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। नेपाल के पोखरा में कल भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज की मुलाकात हुई। पठानकोट पर चरमपंथी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच इस स्तर की ये पहली आधिकारिक मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि 27 तारीख की रात को पाकिस्तान से पठानकोट हमले की जांच के लिए टीम भारत आएगी और 28 तारीख से अपना काम शुरू करेगी। इस मुलाकात से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। संदीप सोनी की रिपोर्ट।
नेपाल के पोखरा में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की मंत्री स्तरीय बैठक से इतर सुषमा स्वराज और सरताज अजीज ने मुलाकात के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा,
अब जब मैं और सरताज साहब मिले तो पठानकोट की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो पठानकोट की बात भी हमारी हुई और मुझे खुशी है कि जो इतने दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे JIT कब आएगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई तारीख तय हुई या नहीं हुई, तो वो तारीखें भी तय हो गई हैं। 27 तारीख की रात को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत पहुंचेगी और 28 तारीख से अपना काम शुरू करेगी।
सुषमा स्वराज के बाद अपनी बारी आने पर सरताज अजीज बोले,
जिस तरीके से पठानकोट के इश्यूज को हैंडल किया गया है, जिस तरीके से कोऑपरेशन हुई है और अब JIT वहाँ जा रही है, मेरा ख्याल है कि इस सब्जेक्ट पे जिस तरह की कोऑपरेशन शुरू हुई है उसके अच्छे मुस्बत नतीजे निकलेंगे।
सुषमा स्वराज और सरताज अजीज के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन से ये बात भी निकल कर आई कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जल्द मिल सकते हैं।
अब अगला जो मौका है वो इस महीने के आखिर में 31 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब भी वाशिंगटन जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ जा रहे हैं, तो उम्मीद तो है कि दोनों की मुलाकात होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पर सिर्फ एक ही दिन का क़याम है, तो अभी स्ट्रक्चरल डायलाग का मालूम नहीं है, लेकिन कम अज़ कम उम्मीद यही है की जा सकती है कि मुलाकात होगी, तो उससे ये मामले हमारे जो ताल्लुकात की में जो पेशरफ्त आई थी और जो हुई थी रुकावटें, उम्मीद है कि वो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
सुषमा स्वराज ने सरताज अजीज से मुलाकात को सार्थक बताया और कुछ उलझे मुद्दों को सुलझा लेने का दावा किया।
मैंने प्रधानमंत्री जी की तरफ से निमंत्रण स्वीकार किया, उनका और नवाज साहब का शुक्रिया अदा किया। इस बार की सार्क की बैठक का वातावरण पुरानी सार्क बैठकों से बिल्कुल अलग था और कुछ मुद्दे जो उलझे हुए थे और हम दोनों देश के बीच में उलझे हुए थे, उनको भी हमने बहुत ही सहयोग के साथ सकारात्मक रवैये से तय कर लिया।
अब देखना यह है कि ये मुलाकात भारत पाकिस्तान के संबंधों को बेहतर बनाने में क्या भूमिका अदा करती है।
तो जैसा कि अभी आपने संदीप सोनी की रिपोर्ट में सुना, सुषमा स्वराज और सरताज अजीज ने पोखरा में हुई मुलाकात को सार्थक बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुषमा और सरताज की इस मुलाकात के वाकई कोई नतीजे निकलेंगे या फिर ये मेल मुलाकात महज रस्म अदायगी है। इस मुलाकात के मायने और इसके तमाम दूसरे पहलुओं को समझने के लिए संदीप सोनी ने ही बात की रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन से।
कुछ हद तक पिछले दो दिन में जो नजर आया उससे ये महसूस होता है कि जो एक सिलसिला शुरू हुआ था उसकी कड़ियां दोबारा से उठाने की एक कोशिश हो रही है। जैसे सरताज अजीज ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों वजीर आजम जो हैं वो महीने के आखिर में अमेरिका में मुलाकात करेंगे, मेरे ख्याल वो भी मुलाकात होगी, लेकिन मुद्दे मुझे नहीं लगता कि किसी सुलझाव की तरफ जा रहे हैं। वो जो उलझने हैं वो अभी भी वही हैं जो पिछले कई सालों से हैं। ये वातावरण जितना मर्जी इम्प्रूव हो जाए, जब तक उन उलझनों की गुत्थी को नहीं सुलझाया जाएगा तब तक ये जो सारा का सारा खेल है, इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई सलूशन हमारे को नजर आएगा।
ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 27 मार्च को भारत आएगी ऐसा बताया गया है, आपको क्या लगता है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ हो सकता है?
मैं तो कोई बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हूँ। वैसे अगर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आती है तो वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत वो आ रही है, वो एक जरूरी अमल है, ताकि अगर वो केस किसी कंक्लूजन तक जाना है पाकिस्तान में तो शायद ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ पर आकर एविडेंस कलेक्ट करना, तहकीकात करके वापस लेके जाना और कोर्ट में पेश करना, वो उसका एक जरूरी अमल है। लेकिन ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम लगभग 2 महीने के बाद आ रही है जबकि वो हादसा हुआ, तो उसके बाद जो डिफेंस के लॉयर्स होंगे वो ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल इस तरीके के उठाएंगे जो शायद प्रोसिक्यूशन पूरी तरीके से उनको डिफेंड ना कर पाए अपने चार्जेस को। ये जो पठानकोट वाला केस है ये किसी किनारे जाएगा, लेकिन क्योंकि महीने के आखिर में या अगले महीने की शुरुआत में अगर दोनों प्रधानमंत्रियों ने मुलाकात करनी है और उससे पहले ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर आती है, तो कुछ हद तक ये लगेगा कि एक बड़ा सकारात्मक माहौल बन रहा है और दोनों वजीर आजम इस बार कुछ एक पॉजिटिव एटमोसफेयर के तहत मिलेंगे। उससे ज्यादा मुझे इस समय कोई ज्यादा अहमियत नजर नहीं आ रही इस JIT की, जब तक वो अपनी रिपोर्ट नहीं पेश करते और फिर वो रिपोर्ट कोर्ट में दायर नहीं करते, और फिर ये देखना पड़ेगा कि वो कोर्ट केस को कितनी संजीदगी के साथ परस्यू करते हैं, मैं खैर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा बनस्बत इसके कि सिर्फ वो आ रहे हैं।
रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन सुषमा और सरताज अजीज की मुलाकात का विश्लेषण कर रहे थे।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। रुख भारत के उत्तराखंड का करते हैं। 14 तारीख को देहरादून में एक प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग काटनी पड़ी है। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान इस घोड़े की टांग टूट गई। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू ने कहा कि संक्रमण फैलने के डर से घोड़े के पांव को काटना पड़ा है।
ब्लड सप्लाई जो है वो इंजर्ड पोर्शन को जानी बंद हो गई है और ऐसी परिस्थिति में अगर इमीडिएटली लेग को एम्प्यूटेट नहीं किया जाता तो उससे गैंग्रीन स्प्रेड हो जाएगी और घोड़ा है उसकी जान चली जाए, इसलिए इसको अर्जेंसी को दृष्टिगत रखते हुए और सभी डॉक्टरों की सहमति को देखते हुए हॉर्स की शक्तिमान की जो लेग है उसकी जान बचाने के लिए उसको एम्प्यूटेट करने का निर्णय लिया गया है।
ये थे उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू। भारतीय जनता पार्टी के विधायक गणेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने लाठी से पीट पीट कर घोड़े की टांग को तोड़ दिया, लेकिन जोशी इससे साफ इनकार करते हैं। इस बीच घोड़े के घायल होने के मामले में एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड विधानसभा का मौजूदा बजट सत्र सदन के बजाय सड़क के हंगामे के लिए याद किया जाएगा, जिसमें राज्य के इकलौते विपक्षी दल बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस का एक घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया। बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारी जत्थे को रोकने की कोशिश के लिए घुड़सवार पुलिस बुला ली गई थी। इसी दौरान उत्तराखंड पुलिस की शान माने जाने वाला शक्तिमान नाम का घोड़ा तमतमाए बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने पड़ गया, जिनकी अगुवाई बीजेपी विधायक गणेश जोशी कर रहे थे। आरोप है कि विधायक ने आव देखा न ताव एक डंडा लिया और घोड़े की टांग पर बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि इस बारे में कोई स्पष्ट वीडियो साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता एक तस्वीर में घोड़े के सामने विधायक जोशो खरोश से लाठी उठाए वार की मुद्रा में बेशक नजर आते हैं। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है और गिरफ्तारी शुरू कर दी है। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल संजय गुंजियाल।
नैनीताल जनपद से जो मेन जो वीडियो क्लिप्स में भी आए हैं और जो आई विटनेसेस के द्वारा भी बयान दिया है, उसके आधार पर एक अभियुक्त प्रमोद बोरा मुखानी थाने का और हल्द्वानी क्षेत्र का है, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और बाकी जो अभियुक्त है उसके संबंध में विवेचना चल रही है और एविडेंस कलेक्शन का काम किया जा रहा है।
माना जा रहा है कि इस मामले में बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर भी कानून की तलवार लटक रही है, लेकिन फिलहाल वो पुलिस कार्रवाई से बेखौफ नजर आ रहे हैं।
गिरफ्तारी से हम घबरा जाएंगे क्या? हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जेलों में रहते हैं, हमारे नेता जेल में रहे हैं। मैं खुद आंदोलन के अंदर 27 दिन बरेली सेंट्रल जेल में रहा हूँ, राम जन्मभूमि के आंदोलन में जेल में रहा हूँ। मुलायम सिंह की पुलिस ने दो बार हमारे हाथ तोड़े हैं, हम तो आंदोलनकारी हैं, क्या जेल जाने को घबराने वाले थोड़ी हैं हम लोग।
जोशी ने उल्टा कांग्रेस सरकार पर ही आरोप लगा दिया कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वो घोड़े को मरवाना चाहती है।
तो मैं पुलिस के अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, कहता रहा हूं मैं। उसको कहा गया कल एक मीटिंग में टेलीफोन करके कि इस घोड़े को काम कर दो उसका, उन्होंने कहा वैसा पाप मैं नहीं करूंगा।
लेकिन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के आरोपों को अनर्गल प्रलाप कहकर खारिज कर दिया।
एक मूक जानवर को मारना और वो तो बहुत घृणित काम है, मैंने डीजीपी को बुला करके कहा है कि उसका इलाज करवाएं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उत्तराखंड उतना ही असंवेदनशील हो गया है जितना असंवेदनशील भाजपा है। जो सरकार में भी रहा हो, जिसकी दिल्ली में सरकार हो, यदि वो इतना ही गैर जिम्मेदार हो गया है तो उसको कानून क्या दंड देगा, उसको उत्तराखंड की जनता दंड देगी।
बहरहाल ये मामला देश विदेश की सुर्खियों में आ गया है और पशु प्रेमी संगठन और अन्य लोग घोड़े पर हुए हमले को लेकर अफसोस और हैरानी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या घोड़ा इतनी भीड़ और गहमा गहमी से बिदक कर नीचे गिरा और वहां पड़े लोहे से चोट खा बैठा, या उसे कथित रूप से इतना मारा गया कि उसे अपनी टांग गंवानी पड़ी।
ये थी देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट। और मेरे सामने अमर उजाला है जिसमें कि शक्तिमान की कटी हुई टांग को काटी हुई जो टांग है वो कृत्रिम पैर पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मेरे सामने अमर उजाला है। बाकी अखबार क्या कह रहे हैं हरिता?
जी मोहनलाल जी, सबसे पहली खबर टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार की मैं लेना चाहती हूँ, बड़ी प्रमुखता से छापी है, गे सेक्स नॉट अ क्राइम सेज आरएसएस, मतलब समलैंगिक सेक्स अपराध नहीं है आरएसएस ने कहा है। इससे सरकार को दोबारा इस मुद्दे पर विचार करने का की उम्मीद जगती है। ये इन्होंने कहा है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कार्यक्रम में कहा है। आरएसएस के दत्तात्रेय होसपोले ने कहा कि आरएसएस को इस पर कोई राय देने की जरूरत तब तक नहीं है क्योंकि अगर इससे दूसरों को फर्क नहीं पड़ता, दूसरों को कोई परेशानी नहीं होती, तो ये अपराध नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रमुख खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है। और इसके अलावा एक जो खबर सब अखबारों में छाई हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद और धर्म को आपस में ना जोड़ें। ये
सूफी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे,
सूफी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे, हिंदुस्तान ने ये हेडलाइन छापी है। और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है कि इंडिया हैज स्पेस फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों और नास्तिकों के लिए भी भारत में जगह है, प्रधानमंत्री ने कल ये कहा है।
अमर उजाला मेरे सामने है और कह रहे हैं कि पीएम मोदी का बयान है कि इस्लाम का असली मतलब ही अमन है, अल्लाह के 99 नामों में से किसी का भी अर्थ हिंसा नहीं है,
किसी का भी अर्थ हिंसा नहीं है। इसके अलावा एक खबर हिंदुस्तान में बड़ी प्रमुखता से छापी गई है, मालिया से पाई पाई वसूलेंगे, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है। हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे शराब कारोबारी विजय मालिया पर केंद्र सरकार सख्त हुई। इसके अलावा जनसत्ता की एक खबर जो हेडलाइन छापी है इन्होंने कि जाट आंदोलन टला, हरियाणा में जो जाट आंदोलन हुआ था उसकी बात है ये, हरियाणा ने बजट सत्र में आरक्षण पर विधेयक पारित करने का वादा किया है और वार्ता के लिए बुलावे के बाद ये आगे का कदम उठाया गया है।
और एक खबर और जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा कि हरियाणा के कृषि मंत्री धनखड़ ने दिल्ली को पानी में देने में असमर्थता जताई है और केजरीवाल बनवाल ने अपनी नहर, ये शीर्षक लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया हरत्या कांडपाल अखबारों की समीक्षा का।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
इनका भी कश्मीर श्रृंखला में इन दिनों आप सुन रहे हैं अपने घरों से उजड़े कश्मीरी पंडितों के पोस्टकार्ड। अब तक आप सुन चुके हैं पलायन से पहले के कश्मीर में बड़े होने का अनुभव, उस पीढ़ी की बात जो कश्मीर से बाहर पैदा हुई और कश्मीर के एक हिंदी साहित्यकार का बखान। लीजिए आज प्रस्तुत है जम्मू में रह रहे डॉक्टर रमेश तामीरी का पोस्टकार्ड, जिसमें उन्होंने बताया है कि वामपंथी आंदोलन से कश्मीरी पंडितों का मोहभंग कैसे हुआ।
अस्सी का दशक आधा बीतते बीतते कश्मीरी लड़कों के सीमा पार जाकर वहां के ट्रेनिंग कैंपों में हथियार चलाने और फौजी भीतरघात सीखने की खबरें आने लगी थीं। इसके बाद भारत के खिलाफ, कम्युनिस्टों के खिलाफ और पंडितों के खिलाफ कट्टरवादी अभियान शुरू हो गया, लेकिन राज्य और केंद्र की सरकारें खामोश रहीं। पीएन जलाली और पीर गयासुद्दीन नाम के कम्युनिस्ट पत्रकारों ने इसके खिलाफ उदारवादी सोच रखने वालों को एकजुट करना शुरू किया। राष्ट्र सत्र पर वामपंथी नेतृत्व को भी इन बदलावों के बारे में बताया गया, लेकिन इन सभी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। कश्मीर में प्रगतिशील साहित्यिक और राजनीतिक आंदोलन को परवान चढ़ाने में पंडितों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेरे कई रिश्तेदार वामपंथी आंदोलन में सक्रिय थे, मैं खुद वामपंथी विचारों से प्रभावित था। 1978 से ही मैं और मेरे पंडित और मुसलमान दोस्त हर रविवार को देश दुनिया के विषयों पर, साहित्य पर और मार्क्सवाद पर बातचीत किया करते थे। दोनों समुदायों के कामरेडों में कट्टरवाद और अलगाववाद की बढ़ती प्रवृत्तियों के खिलाफ एक मत हुआ करता था, पर स्थितियां बदलने लगी। मुझे याद है कि ट्रेड यूनियन नेता हृदयनाथ वांचू बटमालू में सोवियत संघ की किताबों की दुकान चलाते थे और नगरपालिका कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल चलाते थे। एक रविवार को कुछ नौजवानों ने हमसे विवाद शुरू कर दिया। ये सभी एक इस्लामी संगठन से जुड़े लोग थे। उनका इल्ज़ाम था कि वांछू समाज को बर्बाद कर रहे हैं और नौजवानों को कम्युनिस्ट बना रहे हैं। तेज बहादुर बान जम्मू कश्मीर सरकार में इंजीनियर थे और विचारों से वामपंथी थे। उन्होंने 3 उपन्यास लिखे थे। एक किताब में उन्होंने डार्विन के सिद्धांत पर जिक्र किया था। ये किताब 20 साल पहले छपी थी, पर जमात इस्लामी ने हायतोबा मचानी शुरू की और सरकार पर बान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डालना शुरू किया। बान को सरकारी नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मुद्दे पर संसद में हंगामा किया, जिसके बाद ये केस बंद किया गया। इन घटनाओं के बाद हमने रविवार को मिल बैठकर बात करना बंद कर दिया और बाहर निकलना भी कम कर दिया। दिसंबर 1999 में वामपंथी राजनीति करने वालों को सीधी धमकियां मिलनी शुरू हो गई। इसी बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अब्दुलस्ता रंजूर की हत्या कर दी गई। हालात खराब होने पर कई लोग घाटी छोड़कर जम्मू चले गए। जो बचे रहे वो या तो खामोश हो गए या उन्हें पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत पड़ गई। इसके बावजूद देश में वामपंथी पार्टियों का नेतृत्व अलगाववादी आंदोलन के कारण पैदा हुए इस खतरे को बांपने में फेल हुआ। इसके सांप्रदायिक पक्ष पर भी ध्यान नहीं दिया गया। हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे कम्युनिस्ट नेताओं ने ओएन त्रिशूल और ऋषदेव जैसे पार्टी समर्थकों से कह दिया कि पंडितों का समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद त्रिशूल आदि कश्मीरी पंडितों ने दिल्ली आकर अलगाववाद के खिलाफ पर्चे छापने शुरू कर दिए। कश्मीरी पंडितों का वामपंथी आंदोलन से मोह भंग हो चुका था।
इस श्रृंखला के तहत आज शाम दिनभर कार्यक्रम में आप सुनेंगे क्षमा कॉल की यादें। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी हमेशा विवादों में रहते हैं। ताजा विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने कहा अगर उनकी गर्दन पर चाकू भी रख दिया जाए तो भी वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से राष्ट्रवाद की बहस छिड़ी है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत माता की जय का उद्घोष ही राष्ट्रवादी होने की परिभाषा तय करेगा। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने असदुद्दीन ओवैसी से बात की और जानना चाहा कि उन्हें भारत माता की जय बोलने से एतराज क्या है।
अगर आरएसएस या कोई भी हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि किसी भी हिंदुस्तानी की वफादारी और उसके हिंदुस्तान से मोहब्बत का पैमाना ये होगा कि वो उस पर इस तरह के नारे लगाना पड़ेगा, तो मुझे इस पर सख्त एतराज है। मेरा मानना यह है कि जमहूरियत में हर किसी को इख्तियार है नारे लगाने का, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करने का, मगर किसी को ये इख्तियार नहीं है कि यह कहे मैं जो नारा लगा रहा हूँ वही सच्चा है और अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि हमारे आईन में इसका कहीं पर जिक्र नहीं है, ना हमारे आईन के बेसिक राइट्स में इसका शुमार होता है ये जो आरएसएस संघ परिवार कह रहा है।
क्या ये भारत माता की जय नारा लगाने में कोई एतराज है क्या?
मुझे फखर है जय हिंद कहने पर, मुझे खुशी होती है जब मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, और अगर किसी को और खुशी मिलती है दूसरा नारा लगाने से जिस पर हमको मजबूर किया जा रहा है तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है।
कोई एतराज है क्या?
नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा। अगर कोई मेरे सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे इससे खुशी होती है तो मैं कहूंगा भाई भी लगाइए बिल्कुल आप। यही तो हमारा प्लुरलिज्म है, यही तो हमारा डाइवर्सिटी है। और मुल्क की जंग आजादी में मुख्तलिफ नारे लगाए गए जिसमें इनकलाब जिंदाबाद, जिसमें जय हिंद का नारा था, जिसमें ये भी नारा था, जिसमें अल्लाह अकबर का भी नारा लगाया गया। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो जनाब शौकत अली मरहूम जब महात्मा गांधी के पास गए, गुफ्तगू का जिक्र जनाब शौकत बोस एमपी ने अपने एक आर्टिकल में किया है कि उन्होंने जाकर कहा कि महात्मा गांधी के पास के तीन नारे, हमारे पास ये नारे हैं जिसमें अल्लाह अकबर है, जिसमें बंदे मातरम है और ये जो नारा है, और तीसरा उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की भाईचारगी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखो हिंदुस्तान को जोड़ के रखने के लिए बहुत जरूरी है, उसको मजबूत रखने के जरूरी है कि हिंदू मुस्लिम की भाईचारे के नारा को अख्तियार करो।
इसमें
नहीं, इस्लामिक लॉ को नहीं जानता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं जानता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, ये तो आलिम।
क्या इसमें कुछ मतलब इस तरह की भी बात है जैसे और लोग भी कह रहे हैं कि साहब भारत माता की जय अगर बोला जाए तो वो जिससे मुसलमानों को एतराज है क्योंकि उनके रिलीजन के खिलाफ है, तो क्या ये बात सही है?
कि हिंदुस्तान के आईन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, मजहबी आजादी एक बुनियादी हक है और उस बुनियादी हक को कोई नहीं छीन सकता, और उसके साथ एक राइट टू इक्वालिटी है बिफोर लॉ, उसके साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये तीन चीज बहुत बुनियादी और अहम है हमारे आईन और दस्तूर में। ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है ये। तो आपने वारिस पठान को सस्पेंड कर दिया तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? कल कोई कहेगा नहीं वारिस तुम्हारा मजहब ठीक नहीं है तो मजहब चेंज कर लो, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे भाई जमहूरियत है, आपको मेरी बात पसंद नहीं है ठीक है बहुत अच्छा है, हाँ अगर मैं किसी कानून की खिलाफ वर्जी करता हूँ तो मुझ पर केस बुक करिए, जेल में डालिए, सजा दिलाइए, मगर ये कहाँ से आगे कि भाई हमारे ग्रुप को या हमारे संगठन को ये चीज खराब दिख रही है और हम जो बोल रहे हैं वो कानून है, ऐसा तो नहीं है ना, फिर तो रूल ऑफ लॉ कहाँ रहेगा। फिर
मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये एंटी इस्लामिक भी है?
हम अपनी माँ से यकीनन मोहब्बत करते हैं, जो माँ ने हमको पैदा किया है, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर क्या हम अपनी माँ की इबादत करते? नहीं करते, हम अल्लाह की इबादत करते। मुझे इस मुल्क से मोहब्बत थी और है और रहेगी, मैं इस मुल्क का वफादार हूँ और रहूंगा, मगर किसी को इख्तियार नहीं है कि मेरी वफादारी पर शक करे महज इस बुनियाद पर कि आपका जो नारा है मैं उसको नहीं बोलता हूँ।
असद साहब, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ तो कि ये अचानक ये जो माहौल पैदा हुआ है मुल्क में, ये कहाँ की तरफ जा रहा है? लोग आपसे कहते हैं कि साहब आप वफादार नहीं, आप देशभक्त नहीं, आप देशद्रोही हैं।
और कोई कहता है कि मेरी जबान काट कर लाओ, 1 करोड़ लो, 21,000 रुपए ले लो, तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसी पुरपेज वादियों की तरफ जा रहे हैं जिसमें रोशनी नहीं, अंधेरा है उधर, क्योंकि हम अगर असदुद्दीन ओवैसी कोई बात करता है और उसका कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो आपको इख्तियार है कि आप कहें कि भाई गलत बोल रहे हैं, मगर जो कानूनी जवाब नहीं है जिससे इस मुल्क का सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म मुतासर होगा, और हिंदुस्तान की खूबी, हिंदुस्तान की कामयाबी ये रही कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं रहा, इस मुल्क ने तमाम तहजीबों को कबूल किया और तमाम तहजीबों को फ्लरिश होने दिया, यही इस मुल्क की खासियत थी और रहेगी इंशाल्लाह। मगर अगर कोई ये कहेगा कि इस मुल्क में एक ही तहजीब और एक ही मजहब चलेगा तो ये मुल्क के मफाद में नहीं है, और मुझे फखर है कि मैं जय हिंद कहता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ।
भारत माता की जय न बोलने के चलते चर्चा में आए असदुद्दीन ओवैसी का ये साक्षात्कार आप शाम के कार्यक्रम में भी सुन सकेंगे। और अब कार्यक्रम में उन खबरों की बात जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर एसएआर गिलानी की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में आज सुनवाई होगी। एसएआर गिलानी पर दिल्ली के प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। गिलानी को 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ स्थानीय अदालत आज सुनवाई करेगी। भाजपा नेता संजीव बालियान, भारतेंदु सिंह, सुरेश राणा, संगीत सोम और विश्व हिंदू परिषद की साध्वी प्राची को अदालत ने सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं रहने की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को लेकर बीसीसीआई की दलील सुनी जाएगी। लोढ़ा पैनल ने बीसीसीआई में सुधारों की सिफारिश की है जिनसे बीसीसीआई ने असहमति जताई है।
T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान के 153 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही श्रीलंका की टीम ने 19वें ओवर में ही ये मैच जीत दिया। शुरुआती ओवर में अनुभवी तिलक रत्ने, दिलशान और दिनेश चांदीमल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। सलामी बल्लेबाज दिलशान ने अपनी विजयी पारी खेली और नाबाद 83 रन बनाते हुए श्रीलंका को पहली जीत दिला दी। उन्हें मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और अफगानिस्तान के 4 विकेट महज 51 रनों पर ही गिर गए थे। कुल मिलाकर उन्होंने लक्ष्य दिया 154 रनों का। और कार्यक्रम में अब एक बार फिर से मुख्य समाचार सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी संयुक्त जांच टीम 27 मार्च को भारत आएगी। नेपाल के पोखरा में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज की मुलाकात के बाद ये घोषणा की गई। गुजरात के राजकोट में गौ रक्षा एकता समिति नाम के संगठन के एक सदस्य की कीटनाशक पीने से मौत हो गई और इसके बाद शहर में तनाव बना हुआ है। अमरीका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के नरसंहार के मामलों की जांच में अमेरिका सहयोग के लिए तैयार है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट पर मध्य पूर्व में ईसाई, यजीदी और शिया समुदाय के लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया था। अमेरिका ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने 2 मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में छोड़े हैं। अमरीका ने उत्तर कोरिया को तनाव न बढ़ाने की चेतावनी दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। अगली सभा विश्व भारती में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।